ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर 50 साल बाद ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीता है। वहीं कुश्ती में अमन सहरावत 57 किलो के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। रात 10:15 उनका मुकाबला जापान के हुगुची से हुआ। क्वार्टर फाइनल में अमन ने अल्बेनिया के अवराकोव को 12-0 से हराया। रात करीब 12:00 नीरज चोपड़ा भाला फेंक के फाइनल में फिर से स्वर्ण पदक जीतने के लिए खेलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह जीत भारत के लिए गर्व का विषय है और भारतीय हॉकी टीम के फिर से मजबूत होने के लिए प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की निरंतरता, कौशल, समन्वय और मुकाबले की भावना देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम की सफलता उसके कौशल और टीम भावना की परिचायक है। उन्होंने कहा कि भारतीयों का हॉकी के साथ भावनात्मक जुड़ाव है और यह पदक देश के युवाओं में हॉकी को और लोकप्रिय बनाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्हें ब्रिटेन के विदेश मंत्री का फोन आया था और उन्होंने बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 9000 विद्यार्थियों सहित लगभग 19000 भारतीय नागरिक इस समय बांग्लादेश में हैं। सरकार भारतीय नागरिक की सुरक्षा तय करने के लिए उच्चायोग के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत आने की स्वीकृति अल्प सूचना पर दी गई थी। सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति सहित सभी स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रही है। संसद ने वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार कोविड के बाद से लगातार पूंजीगत व्यय पर ध्यान देकर अधिक से अधिक राशि खर्च कर रही है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,02,000 करोड़ रूपये यानी 18% रहा है। वित्त मंत्री आज राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही थीं। चर्चा के दौरान कांग्रेस के विवेक तन्खा ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए विशेष कर व्यवस्था नहीं है। भाजपा की रामिला बेन बारा ने कहा कि यह बजट गरीबों, ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं के लिए है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% वस्तु और सेवा कर वापस लेने की मांग की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून की आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। यह कानून पारदर्शिता लाने और मुस्लिम महिलाओं तथा पिछड़े मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व तय करने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक हितधारकों के साथ बिना उचित परामर्श के लाया गया है। विधेयक को लाने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान कल से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जाएगा। नई दिल्ली में संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोगों से घरों पर तिरंगा लहराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।